नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय में सोशल सेंटर स्कूल के नए अकादमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ब्रिटेन से आए नए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस ने शहादरा जिले में अवैध शराब रैकेट का पर्दाफाश किया। शिक्षा मंत्री ने दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 पर अभिभावकों के साथ चर्चा की और बवाना विधानसभा क्षेत्र के कटेवरा गांव में अनुसूचित जाति बस्तियों में निर्माण कार्यों का उद्घाटन हुआ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय में सोशल सेंटर स्कूल के नए अकादमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली के शिक्षा परिदृश्य में व्याप्त कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव दिया कि विश्वविद्यालय आसपास के सरकारी और निगम के विद्यालयों को गोद ले और उनमें मार्गदर्शक की भूमिका निभाए। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार एक बार फिर यूथ स्पेशल शुरू कर रही है, जो विश्वविद्यालय के मार्ग पर चलेगी।
आज सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं और जो हमारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, उनको हमें आपस में जोड़ना चाहिए। हर कॉलेज को किसी दो या तीन स्कूलों से जोड़ा जाए और वहाँ के स्टूडेंट वीकली क्वार्टरली उस अडॉप्टेड स्कूल में जाकर के उन बच्चों को मोटिवेट भी करें, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी दें, उनके साथ में समय बिताएं और उनमें नई आशाएं जगाएं। प्राइमरी लेवल पे जब सिखा देते हैं तो वो जीवन भर साथ चलती है।
इस अवसर पर बिजली मंत्री आशीष सूद, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, विधायक सूर्य प्रकाश खत्री और अजय महावर मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज ब्रिटेन की संसद की उपाध्यक्ष नुसरत घानी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्य और ऐतिहासिक संबंध हमारी आधुनिक साझेदारी को दिशा दे रहे हैं। उन्होंने भारत ब्रिटेन संबंधों में हो रहे रणनीतिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देश अब व्यापार, शिक्षा, रक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे अनेक क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं।
इस बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान श्री गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में 1,70,000 से अधिक भारतीय छात्र ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के कदम को महत्वपूर्ण बताया। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने दिल्ली विधानसभा की ऐतिहासिक पहलों से भी प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया, जिनमें ई विधान प्रणाली नेवा के माध्यम से पूरी तरह कागज रहित कार्य प्रणाली अपनाना और 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत प्रमुख है। उन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा देश की पहली नेट जीरो कार्बन विधानसभा बन चुकी है। इस बीच ब्रिटेन की संसद की उपाध्यक्ष नुसरत घानी ने दिल्ली विधानसभा की मेजबानी और पहलों की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्था न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि 21वीं सदी की लोकतांत्रिक और सतत शासन व्यवस्था का आदर्श भी प्रस्तुत करती है। इस बैठक का समापन लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थागत सहयोग को और मजबूत करने के संकल्प के साथ हुआ। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली पुलिस ने शहादरा जिले से अवैध शराब रैकेट का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले में 1,400 से अधिक शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। पुलिस ने कहा कि इस संबंध में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी हरियाणा राज्य में बेची जाने वाली शराब दिल्ली में बेच रहे थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस मामले में आगे की पूछताछ और जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 पर अभिभावकों के एक समूह के साथ चर्चा की। इस चर्चा के दौरान मंत्री ने बताया कि विधेयक एक ऐतिहासिक सुधार है, जिसका उद्देश्य सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में शुल्क विनियमन के लिए एक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह ढांचा स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत मौजूदा वैधानिक ढांचे को पूरक और मजबूत बनाता है। श्री सूद ने कहा कि इस विधेयक के अंतर्गत यह पहली बार होगा जब शिक्षा विभाग को मनमानी फीस वृद्धि के मामलों में किसी भी अभिभावक की एक भी शिकायत पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक निजी स्कूलों की शुल्क संरचना में लंबे समय से लंबित पारदर्शिता और समानता लाने के लिए बनाया गया है। समाज कल्याण और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज बवाना विधानसभा क्षेत्र के कटेवरा गांव में अनुसूचित जाति बस्तियों में गलियों, सड़कों और नालियों के पूर्ण हुए निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन बस्तियों में सभी बुनियादी सुविधाएं विकसित कर उनका कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि वो इन बस्तियों को बुनियादी सुविधाएं दे। उन्होंने स्थानीय निवासियों के साथ गांव में चल रहे अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया और निर्माणाधीन चौपाल का कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान श्री सिंह ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट आधारित छात्रवृत्ति समय पर देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज तिमारपुर स्थित संजय बस्ती में स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में रोजाना हजारों जगहों पर स्वच्छता अभियान का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सभी निवासी कल्याण संघ, धार्मिक और सामाजिक लोग तथा जनप्रतिनिधि इस अभियान से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति सफाई की जिम्मेदारी लेगा तो शहर को साफ, सुंदर एवं हरित बना पाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में 26, 27 और 28 अगस्त को 3 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सर संघ चालक डॉ. मोहन भागवत मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह को भारतीय राजनीतिक इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने पर शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का नेतृत्व उनके अडिग संकल्प और अथक परिश्रम से प्रेरित साहसिक निर्णयों ने देश की सुरक्षा और आंतरिक शांति को नया आयाम दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली में 80वें हिरोशिमा दिवस पर राजघाट के पास गांधी दर्शन में एक अंतर विद्यालयी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह दिवस शांति की प्रासंगिकता को स्मरण कराता है। इस कार्यक्रम का विषय है शांति ही रास्ता है। यह कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गांधी स्मृति और गांधी दर्शन ने लोगों से अपील की है कि वे बापू के अहिंसा, शांति और वैश्विक सद्भाव के शाश्वत संदेश को आगे बढ़ाने में मदद करें और इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धरावली गांव में बादल फटने से कई परिवारों के हताहत होने पर दुख व्यक्त किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत हृदय विदारक है। उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में प्रभावित सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की और सभी के कुशलता की प्रार्थना की। राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली प्रीमियर लीग में आज आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने पुरानी दिल्ली 6 को 82 रन से हराया। शुरुआती ओवरों में सनत सांगवान की आक्रामक बल्लेबाजी की मदद से दिल्ली वॉरियर्स ने 148 रन बनाए। अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज ब्रिटिश सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने वहां के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में दौरा किया और कार्यवाही देखी। इस दौरान विधायकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विधानसभा में फांसी घर बनाए जाने को भ्रामक बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सदन शुरू होते ही अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 9 अगस्त के दिन वर्ष 2022 में भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर लाखों रुपए खर्च करके फांसी घर का उद्घाटन किया था, जबकि यहां कोई फांसी घर नहीं था। यह मामला भाजपा के मुख्य सचेतक अभय वर्मा ने उठाते हुए बताया कि दिल्ली विधानसभा परिसर में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने फांसी घर बताया, जबकि यह टिफिन रूम और लिफ्ट रूम है। यह इतिहास को भ्रमित तरीके से प्रस्तुत किया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह कहते हुए इस मुद्दे को खारिज करने का प्रयास किया कि दिल्ली में चर्चा के लिए और भी कई मुद्दे हैं। भाजपा ने इस मामले को उठाते हुए और कई विधायकों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस मामले पर कई संस्थाओं के इतिहासकारों से बातचीत हुई है और उन्होंने नक्शे आदि सहित पूरी जानकारी दी है। वहीं सदन में शून्यकाल के दौरान विधायकों ने अपने अपने इलाकों की समस्याओं को उठाया। आम आदमी पार्टी विधायक अनिल झा ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जल भराव की समस्या को उठाया और कहा कि बड़े नाले बनाकर यहां जल निकासी का प्रबंध करवाना चाहिए। शकुरपुर बस्ती से भारतीय जनता पार्टी के विधायक करनैल सिंह ने महावीर अस्पताल में कर्मचारियों की कमी को दूर करने का मामला उठाया, तो वहीं भाजपा के विधायक कैलाश गंगवाल ने मादीपुर में पालतू पशुओं के खुले में घूमने का मुद्दा उठाया। द्वारका से विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने दिल्ली परिवहन निगम के करीब 20,000 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 2015 से नियमित पेंशन नहीं मिल रही है और न ही कैशलेस सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। कालकाजी से विधायक आतिशी ने दिल्ली में झुग्गियों को तोड़े जाने का मुद्दा उठाया और कहा कि कालकाजी में भी झुग्गियों को तोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि 3,000 फ्लैट यहां बने हैं, जिनमें से 1,800 फ्लैट आवंटित किए गए हैं। हालांकि अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार ने ही बनाई थी और उसी के आधार पर झुग्गियों के पुनर्स्थापन का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा नीति लागू कर हर आखिरी पायदान पर खड़े बच्चों को स्कूलों से जोड़ा जाता है, तो वहीं इस विधेयक से रेखा गुप्ता सरकार ने और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए हर एक अभिभावक को चिंता से मुक्त करने की बात कही। इसी बीच अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन में जरूरी दस्तावेजों का जहां पटल पर रखने की अनुमति दी, तो वहीं व्यवस्था देते हुए कहा कि शिक्षा विधेयक पर संशोधन जो भी विधायक देना चाहता है वो दे और चर्चा के दौरान उस संशोधन के कारण भी बताएं। इसके साथ ही कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बुधवार को भी शिक्षा विधेयक पर चर्चा जारी रहेगी। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। भारत और फिलीपींस आपसी सहयोग को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमत हुए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय में सचिव पेरिया सामी कुमारन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोम अल्देज मार्कोस ने द्विपक्षीय वार्ता में उन्नत रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत सहयोग के लिए वर्ष 2025 से 2029 के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया। श्री कुमारन ने कहा कि भारत और फिलीपींस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति मार्कोस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट भी करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति मार्कोस के सम्मान में एक भोज भी देंगी। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए के अन्य सांसद इसमें शामिल हुए। बैठक के दौरान सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। सांसदों ने सशस्त्र बलों की भूमिका और उनके अडिग समर्पण की सराहना करते हुए ऑपरेशनों की सफलता पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय में सोशल सेंटर स्कूल के नए अकादमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ब्रिटेन से आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस ने शहादरा जिले में अवैध शराब रैकेट का पर्दाफाश किया। शिक्षा मंत्री ने दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 पर अभिभावकों के साथ चर्चा की और बवाना विधानसभा क्षेत्र के कटेवरा गांव में अनुसूचित जाति बस्तियों में निर्माण कार्यों का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।